ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से कई कदम उठाए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 मुख्य के अंतिम परिणाम जारी किए। जशपुर और बलौदाबाजार भाटापारा जिले में हुई दो सड़क दुर्घटनाओं में कुल 9 लोगों की मौत। और आज से एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान वीबीजी रामजी यूथ डिजिटल कैंपेन की शुरुआत की गई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और दीर्घकालिक विकास यात्रा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। कृषि और ग्रामीण परिवर्तन विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से कई कदम उठाए हैं।
कृषि, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का स्ट्रेटेजिक पिलर भी है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी तैयार करने का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है।
लखपति दीदी अभियान की सफलता की भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। अब 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे।
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 मुख्य के अंतिम परिणाम जारी कर दिए हैं। इस बार राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम है। वहीं तीसरा स्थान एकांश ढूल ने हासिल किया है। ये परिणाम लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर जारी किए गए हैं। आयोग ने मेरिट के आधार पर कुल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया है। मेरिट सूची में शीर्ष 25 उम्मीदवारों में 11 महिलाएं और 14 पुरुष शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की 2 सीटों सहित 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। प्रदेश में भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस उम्मीदवार फूलो देवी नेताम के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। इसी के साथ दोनों का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। प्रत्याशी 9 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। जहां जरूरी होगा वहां 16 मार्च को मतदान कराया जाएगा और इसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत मनाए जा रहे जन औषधि सप्ताह के दौरान आज रायपुर में जन औषधि पदयात्रा निकाली गई। नागरिकों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह पदयात्रा शहर के फूल चौक से शुरू हुई जो विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरी। इस सप्ताह के समापन अवसर पर कल 7 मार्च को जन औषधि दिवस पर रायपुर के कोटा स्थित खंडेलवाल पॉलीक्लिनिक में सुबह 10:30 बजे से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार 1 मार्च से देशभर में मनाए जा रहे जन औषधि सप्ताह पर केंद्रित रहेगा। इस विषय पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के प्रबंधक अनिश वर्तिलवार से बातचीत की गई है। इस कार्यक्रम का प्रसारण कल 7 मार्च को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत रतनपुर में आधुनिक तकनीक आधारित डेमोन्स्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के लिए 13 करोड़ रूपये से अधिक की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने उम्मीद जताई है कि रतनपुर में स्वीकृत यह परियोजना आधुनिक निर्माण तकनीक का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनेगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र के संपूर्ण विकास को भी मजबूती मिलेगी। देशभर में इन दिनों 14 वर्ष आयु वर्ग की 1 करोड़ 15 लाख युवतियों के लिए राष्ट्रव्यापी निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करना है। इसी कड़ी में गौरेला पेंटा मरवाही जिले में भी अभियान शुरू करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने बताया कि यह अभियान करीब 3 महीने तक चलेगा और इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में 15 वर्ष से कम आयु के लगभग 4000 किशोरियों को वैक्सीन लगाई जाएगी।
राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में वैक्सीन को शामिल किया गया है और ये वैक्सीन कोई नया नहीं है, पहले से लग रहा था जिसको हम खरीद के लगा रहे थे, लेकिन अब ये मुफ्त सभी बच्चियों को लगाएंगे। ये कैंपेन 3 महीने चलेगा, इसके सारी तैयारी कर लिया गया है। मैं चाहूंगा कि सभी बच्ची इसको लगवाए जो 14 साल कम्प्लीट कर गए हैं, क्योंकि ये सर्वाइकल कैंसर से बचाएगा बच्चियों को।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। जशपुर जिले के गोडा अंबा गांव के पास आज एक तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि करीब 25 यात्री घायल हो गए हैं। यह यात्री बस झारखंड के कुरडेग से कुनकुरी की ओर आ रही थी। इसमें 30 से अधिक यात्री सवार थे। जैसे ही बस तपकरा थाना क्षेत्र के गोडा अंबा गांव के पास पहुंची तभी रफ्तार अधिक होने के कारण वाहन चालक का बस से नियंत्रण हट गया और यह बस सड़क किनारे पलट गई। बस पलटते ही कई यात्री अंदर फंस गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। सूचना मिलने के बाद तपकरा और करडेगा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत तथा बचाव कार्य शुरू किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश पाटनवार ने बताया कि घायलों का इलाज कुनकुरी अस्पताल में चल रहा है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं बलौदाबाजार भाटापारा जिले में सिमगा थाना क्षेत्र के पास दरचूरा गांव में यात्री बस और ट्रक के बीच भिड़ंत होने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है जबकि 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक यह बस रायपुर से बिलासपुर जा रही थी और उसमें 35 यात्री सवार थे। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन दोनों हादसों पर दुख जताया है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने माई भारत के साथ मिलकर आज से एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान VBG Ramji यूथ डिजिटल कैंपेन की शुरुआत की है। इसमें देशभर के 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा क्विज, वीडियो चैलेंज तथा रचनात्मक प्रतियोगिताओं जैसी गतिविधियों के माध्यम से जुड़ सकेंगे। युवा अपने गांव के विकास, रोजगार सृजन और आजीविका संवर्धन में अधिनियम की भूमिका को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे। प्रतिभागी किसी भी भारतीय भाषा में 30 से 60 सेकेंड की अवधि का वीडियो तैयार कर माय भारत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इसका उद्देश्य विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के प्रति व्यापक जनजागरूकता सुनिश्चित करना है। अभियान को विकसित भारत GRAMJI युवा शक्ति पंचायत की प्रगति नाम दिया गया है। प्रतियोगिता में सभी पात्र प्रतिभागियों को डिजिटल सहभागिता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद का अवसर भी मिलेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर झारसुगुड़ा सेक्शन और नागपुर मंडल के बोरतलवा दरेकसा तथा गुदमा गोंदिया रेलखंड के बीच तकनीकी कार्यों की वजह से मार्च और अप्रैल महीने के दौरान कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित होगा। वहीं कुछ गाड़ियां गंतव्य से पहले ही समाप्त कर दी जाएंगी। इसके तहत बिलासपुर चांपा सेक्शन के बीच अकलतरा स्टेशन में चौथी लाइन निर्माण कार्य की वजह से 31 मार्च से 11 अप्रैल तक बिलासपुर रायगढ़ बिलासपुर मेमू और गेवरा रोड रायपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी। इसी अवधि में बिलासपुर कोरबा मेमू भी नहीं चलेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए 31 मार्च से 11 अप्रैल के बीच हसदेव एक्सप्रेस को कोरबा बिलासपुर के बीच पैसेंजर के रूप में चलाया जाएगा। वहीं नागपुर मंडल के बोरतलवा दरेकसा और गुदमा गोंदिया रेलखंड के बीच गर्डर लगाने की वजह से आज और कल ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान रायपुर डोंगरगढ़ और गोंदिया मेमू रद्द रहेगी। टाटा इतवारी एक्सप्रेस को भी बोरतलवा तक चलाया जाएगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव आयोग की वेबसाइट पर आगामी 30 अप्रैल तक ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। सुझाव प्रस्तुत करने का प्रारूप MyGOV.in पोर्टल पर उपलब्ध है। और जांजगीर चांपा जिले के बुड़ेना गांव में मुख्य मार्ग को लकड़ी पत्थर रखकर बाधित करने और पुलिस के पेट्रोलिंग वाहनों पर पथराव करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से कई कदम उठाए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 मुख्य के अंतिम परिणाम जारी किए। जशपुर और बलौदाबाजार भाटापारा जिले में हुई दो सड़क दुर्घटनाओं में कुल 9 लोगों की मौत और आज से एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान वीबीजी रामजी यूथ डिजिटल कैंपेन की शुरुआत की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।